नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूसलाधार बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दोनों राज्यों में राहत के लिए एनडीआरएफ की 26 टीम तैनात की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान आज से शुरू। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बंगाल के कलाकारों ने रात भर प्रदर्शन किए। अगस्त में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10% वृद्धि। और पेरिस पैरालंपिक्स में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को तेज वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने में केंद्र के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। हैदराबाद सहित तेलंगाना के विभिन्न भाग कल भी तेज वर्षा से अस्त व्यस्त रहे। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल आज बंद रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर पिछले दो दिन से बहुत तेज वर्षा हो रही है। 17,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 26 टीम दोनों राज्यों में तैनात की जा रही हैं। इनमें 12 टीम पहले से तैनात हैं तथा आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ 14 अन्य टीम भेजी जा रही है। लगातार तेज वर्षा और जल जमाव के कारण 99 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और 54 के मार्ग बदले गए हैं। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय दल का गठन किया है। ये दल जल्द ही राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाजपा के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण कराना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। ये अभियान आज से 10 नवम्बर तक विभिन्न चरण में सम्पन्न होगा। पहला चरण 25 सितम्बर को पूरा होगा। मिक्सड कॉल देकर या पार्टी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से सदस्यता ली जा सकती है। कोलकाता में कल रात फिल्म जगत के प्रमुख कलाकारों और अन्य हस्तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे पिछले महीने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। शहर के कॉलेज स्क्वायर से आरंभ हुई रैली में अपर्णा सेन, स्वास्तिका मुखर्जी, सुदीप्ता चक्रवर्ती, चैती घोषाल, सोहिनी सरकार और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग आज सुबह तक कई स्थलों पर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस या प्रशासन के किसी प्रतिनिधि के आकर उनसे मिलने और मामले में तेजी से जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। जूनियर डॉक्टरों के फोरम ने भी कलाकारों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया। दक्षिण कोलकाता में रामकृष्ण मिशन स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्रों ने भी रैली निकाली और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढ़ी गुजर जाती है, इसीलिए आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के गरीब लोग अदालतों में जाने से डरते हैं। वे अक्सर चुपचाप अन्याय सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ने से उनका जीना और मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मुकदमों की संख्या कम करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म, सत्य और न्याय का आदर करना प्रत्येक जज और न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगस्त में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने के 1,59,000 करोड़ रुपए की तुलना में 10% अधिक है। रिफंड समायोजित करने से पहले केंद्र सरकार ने 30,862 करोड़ रुपए और राज्यों ने 38,411 करोड़ रुपए एकत्र किए। आयात और अंतर्राज्यीय बिक्री पर एकीकृत जीएसटी संग्रह 93,621 करोड़ रुपए रहा। वहीं घरेलू लेन देन से सकल जीएसटी राजस्व 9.2% बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए रहा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। मुख्यमंत्री ने कल काशी विश्वविद्यालय के अपने पहले दौरे के समय ये घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ये 3D संग्रहालय वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा और 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थानों के साथ साथ भारतीय संतों के योगदान पर प्रकाश डालेगा और शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने परिसर के सभी विभागों के साइन बोर्ड को संस्कृत भाषा में करने का भी निर्देश दिया। फिलहाल 234 साल पुराने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा संरक्षण कार्य किया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री मोदी ने दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में चौथी मंजिल से गिरने से कल उमेश उपाध्याय की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय वे निर्माणाधीन मकान का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। वे 64 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति कोल्हापुर के श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। दूसरे दिन वे पुणे के सिम्बॉयसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही वे मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू लातूर के उदगीर में बौद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वे शासन अपल्या दरी तथा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को 28,000 रूपये के मानदेय पर नियुक्त किए जाने की खबरें झूठी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की किसी भी नियुक्ति किए जाने का दावा गलत है। मंत्रालय ने इस खबर को भी गलत बताया है कि नियुक्ति से पहले 1,350 रूपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ मीडिया संगठनों ने झूठी खबर दी थी कि बांग्लादेश के 6 छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ क्षेत्र में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है।
तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। गुजरात, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असना दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ गया है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने पर प्रीति पाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को उन पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने खेल के प्रति प्रीति की निष्ठा और समर्पण की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि प्रीति देश की जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं से फोन पर बात की और उन्हें पदक जीतने पर बधाई दी। पेरिस पैरालंपिक्स के चौथे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। प्रीति ने इससे पहले 100 मीटर T35 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में निषाद कुमार ने 2.4 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं।
महिला बैडमिंटन में तुला समिति मुरुगेसन मनीषा रामदास को हराकर SU5 स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। आज फाइनल में उनका सामना चीन की क्यू जियायांग से होगा। कांस्य पदक के लिए मनीषा डेनमार्क की कैथरीन रोजेनग्रेन के साथ खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के SL3 फाइनल में नितेश कुमार का सामना ब्रिटेन के बैथेल डेनियल से होगा। भारत के ही सुहास यतिराज ने सुकांत कदम को हराया और SL4 फाइनल में पहुंचे। फाइनल में उनका सामना टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मुकाबला लुकास माजुर से होगा। कांस्य पदक के लिए सुकांत और इंडोनेशिया के फ्रीडी सैतियावान आमने सामने होंगे। महिला टेबल टेनिस में भाविनाबेन पटेल ने मैक्सिको की मार्था वर्दीन को हराया और WS4 पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
स्क्वैश टूर कोलकाता के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत के अनाहत सिंह ने फिलीपींस की जैमिका रिबादो को कल एक तरफा मैच में 11-5, 11-3, 11-7 से हरा दिया। अनाहत का ये पांचवां PSA टूर खिताब है। अनाहत ने दिया यादव को 3-0 से हराकर U19 ईस्टर्न स्लैम पर भी कब्जा किया। वहीं T20 ब्लास्ट क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच कल से शुरू हो रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल लंदन के किंगस्टन ओवल में सूर्य और डरहम के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 वेक्टर जनित रोगों के लक्षण, रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इस परिचर्चा में नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कंट्रोल की निदेशक डॉ तनु जैन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ पुनीत मिश्रा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112342105 पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जिला न्यायपालिका के सम्मेलन को संबोधित करने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने राष्ट्रपति के इन शब्दों को प्रकाशित किया है, अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास की जरूरत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राष्ट्रपति मुर्मू और कानून मंत्री मेघवाल ने किया आह्वान, बदलनी होगी तारीख पर तारीख की संस्कृति। GST संग्रह की ऊंची उड़ान, पांचवें माह भी जारी, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, राजस्व 10% बढ़कर 1,75,000 करोड़ रुपए रहा। एथलीटों ने कराई जयकार, निशात की चांदी, प्रीति को कांसे। पेरिस पैरालंपिक में बढ़ाया देश का मान, अमर उजाला की सुर्खी है। पक्षियों को उनका प्रवास मार्ग याद दिलाने का दुनिया का पहला प्रयास, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, भटके पक्षियों को एयरक्राफ्ट से दिखा रहे रहा, नॉर्दर्न बाल्ट इबिस पक्षी 300 साल बाद मध्य यूरोप में झुंड में नजर आए। वडोदरा में बाढ़ के पानी में बहकर आए 40 मगरमच्छ, वन विभाग ने नदी में छोड़ा, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बारिश से आंध्र तेलंगाना डूबे, गुजरात जाएगी टीम। आत्मनिर्भर हुई बेटियां, बना रही LED और सोलर लाइट्स, दैनिक भास्कर ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। झारखंड के बोकारो जिले में पढ़ाई के साथ वोकेशनल कोर्स से बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर। कल विश्व पत्र लेखन दिवस मनाए जाने के अवसर पर देशबंधु लिखता है, डाकिया डाक नहीं लाता, चिट्ठियां कहती हैं, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के।
धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूसलाधार बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दोनों राज्यों में राहत के लिए NDRF की 26 टीम तैनात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान आज से शुरू। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बंगाल के कलाकारों ने रात भर प्रदर्शन किए। अगस्त में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10% वृद्धि। और पेरिस पैरालंपिक्स में निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता, वहीं प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।